कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे वो 38वां श्लोक में भगवान अर्जुन को सुख दुख लाभ लाभा लाभो अलाभो जया जयो इन भौतिक द्वंद्वों से मुक्त होकर फल के आसक्त न हुए बिना फल से आसक्त हुए भी नहीं हुए बिना युद्ध करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के शरण में जाकर भगवान के शरण में अप्रत्यक्ष रूप से इस श्लोक में अर्जुन को इसका संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं कि भगवान को शरण में जाकर कर्म करना चाहिए, तब कोई ऋण नहीं रहता है। अगले श्लोकों में स्पष्टता रूप से या दूसरे शब्दों में फल से आसक्त हुए बिना एक व्यक्ति को हमें अभी फल से आसक्त हुए बिना क्या हो क्या करेंगे वो फल को। कर्म करने से फल तो आएगा ही ना, है ना। युद्ध करने से तो कुछ फल आएगा ही ना, लेकिन क्या करेंगे उसको लेकर। फल से आराधना शक्ति मतलब क्या है, उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान के शरण में जाकर शरण में जाना चाहिए। तो ये ऐसे कर्म करना, इसका संकेत अगले श्लोकों में, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो उसका अर्थ होता है, उसको कर्मयोग भी कहते हैं, निष्काम कर्मयोग भी कहते हैं। अभी हम लोग अगला श्लोक लेंगे। इस श्लोक से भगवान बुद्धि योग को बताएंगे। हम लोगों ने देखा ना बुद्धि योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विच फ्रीज वन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज कर्मिक बॉन्डेज ऑफ कर्म। तो भगवान बुद्धि योग का वर्णन करेंगे जो कर्म से एक व्यक्ति को कर्म के बंधन से एक व्यक्ति को मुक्त करता है। सो ये बुद्धि योग क्या है हम लोग उसको चर्चा करेंगे। ये शाते विहितासां के बुद्धिर योगे पिमांशिनो बुद्ध्या युक्तो ये आपार्ता कर्म बंधन प्रहास्यसी। यहां मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। एषा ते विहितासां के बुद्धियोगे प्रिमां शृणु। अब तक मैं सांख्य का वर्णन किया हूं, तो अभी आप बुद्धि योग के बारे में आप सुनिए। इसको सुनने से आप क्या हो जाएंगे, इस बुद्धि योग में युक्त होने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो अर्जुन को ये कर्म बंधन का भय था, पापों से बंध जाएंगे ऐसे भय था, तो इसलिए भगवान ये बुद्धि योग बता रहे। तो कैसे मुक्त ऐसे कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा हम लोग कर्म के भय से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये शाते विहिता सांख्य, अब तक मैंने सांख्य का वर्णन किया, हाँ तो प्रभुपाद उसके अनुवाद में लिखते हैं वो क्या है सांख्य करके, विश्लेषणात् विश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, विश्लेषक अध्ययन। तो यहाँ पर सांख्य का क्या अर्थ होता है? संख्या मतलब निरुक्त, वैदिक कोश निरुक्त, निरुक्ति हुआ है। उसके अनुसार वो डिक्शनरी है, वेदों के जो शब्द है उसका अर्थ बताया गया है। ये वेदांग है, एक वेदों के अंग है, ये 6 वेदांगों में एक अंग है निरुक्त। तो उसके अनुसार सांख्य का अर्थ होता है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। तो सांख्या सांख्य, देर इज मिस्टेक इन दिस नो, दोनों संख्या मतलब फर्स्ट वन इज संख्या अकॉर्डिंग टू निरुक्त राइट इन इंग्लिश, सो देर इज अ मिस्टेक हियर। अकॉर्डिंग टू द निरुक्ति और वैदिक डिक्शनरी संख्या मीन्स दैट विच डिस्क्राइब्स थिंग्स इन डिटेल। सो सांख्या रेफर्स टू दैट फिलोसफी विच डिस्क्राइब्स रियल नेचर ऑफ द सोल। संख्या संख्या मतलब वो चीजों को विस्तार से वर्णन करता है, ये संख्या होना चाहिए पहला, है ना। वैदिक नया नया भगवद्गीता में कैसा है पढ़िए उसको, पहले तात्पर्य के पहले वाक्य पढ़िए। तो वो संख्या लिख होना चाहिए, वो संख्या संख्या का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा के वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। समझ आ गए? तो संख्या सांख्य, तो सांख्य वो दर्शन है जो आत्मा के स्वरूप को वर्णन करता है। तो सांख्य कहां पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया भगवान ने, मूल स्वरूप का कहां पर वर्णन किया? अब तक वो बोलते हैं ना, अब तक मैंने सांख्य को वर्णन किया। तो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक उन्होंने सांख्य दर्शन को वर्णन किया उन्होंने। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं क्यों भगवान उसको वर्णन किए, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन इस देह के प्रसन्न करना ही जीवन का उद्देश्य सोच रहा था, या देह के जो संबंधित लोग हैं तो उनको प्रसन्न करना ही जीवन का, तो दूसरे शब्दों में उनके उन्होंने उनका सोच जो था या उनका जो निर्णय युद्ध न करने के लिए वो इंद्र तृप्ति के आधार पर था। तो इसलिए भगवान उनको बताए कि आप ये शरीर नहीं हैं, तो आप आत्मा हो, तो इसलिए इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस विभाग में भी भगवान बहुत इंद्र तृप्ति को खंडन करेंगे, वो एक प्रमुख विषय होगा अभी बुद्धि योग जब वर्णन करेंगे भगवान, क्योंकि फल से आसक्त रहना, कर्म के फल से आसक्त रहना मतलब वो इंद्रिय भोग के में लिप्त रहना, इंद्रिय भोग के कारण ही हम लोग फल से आसक्त रहते हैं। और विशेष करके हम लोगों ने देखा चार्वक वगैरह क्या है, वो लोग भी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है इंद्र तृप्ति करना, लेकिन जो लोग कर्म मीमांसक वगैरह कर्मकांड को अनुयायी होते हैं चार्वक का जो इंद्र तृप्ति है वो भी स्थूल है, उससे भी श्रेष्ठ सूक्ष्म तरह का जो इंद्र तृप्ति है और सोफिस्टिकेटेड इंद्र तृप्ति है ये कर्म मीमांसकों का, वो लोग जो कर्मकांड को पालन करके ऊंचे लोकों में जाके इंद्रिय भोग करना चाहते हो, ये लोग सिर्फ घी का के इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, ये लोग और ऊंचे लोक में जाके और अच्छी तरीके का इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। वेदों में यही चीजों का वर्णन आया है ज्यादा से ज्यादा, इस विभाग में भगवान उसको बहुत खंडन करेंगे। तो क्योंकि उस जमाने में ये सब इंद्र तृप्तियां ज्यादा होती थी, आजकल जो मांस भक्षण करके उसके बारे में ज्यादा आता नहीं भगवद्गीता में, व्यभिचार करना, मांस भक्षण करना, एकाध बार धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि वरदर्शवा, या तीन प्रकार के अन्न जो होते हैं अथा रज तम सत्व गुण में जो अन्न होता है, तमोगुण में मांस खाना मतलब तमोगुण का अन्न है, ऐसे बोलते हैं। इधर उधर थोड़ा अहिंसा के बारे में बोलते हैं भगवान, लेकिन ऐसा जो वेदों के आधार पर जो इंद्र तृप्ति है उसको बहुत खंडन करते हैं, कर्म कांड को बहुत खंडन करते हैं भगवान यहाँ विशेषकर, क्योंकि वो बहुत ही प्रगतिशील इंद्र तृप्ति था उस जमाने में, सभी लोग उसको करते थे। इंद्र तृप्ति इंद्रिय भोग मतलब ऐसे करते थे। तो हम लोग वर्णाश्रम को पालन कर सकते हैं, लेकिन वर्णाश्रम का पालन उद्देश्य क्या है, इंद्रिय भोग नहीं है। इंद्र तृप्ति को उसको नियमित करके हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। मनुष्य जीवन का आरंभ होता है वर्णाश्रम से, वर्णाश्रम से मनुष्य जीवन का आरंभ होता है, इसका अर्थ नहीं है कि वही अंत है। मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। तो नहीं तो क्या है, तो वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करके आप बहुत ही अच्छा सोफेस्टिकेटेड एनिमल बन जाओगे फिर से। या सोफेस्टिकेटेड सुधारित व्यक्ति, तो फिर भी वो बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे का समाज है। तो यहाँ पर अर्जुन का जो इंद्र तृप्ति के जो विचार थे उसको खंडन करते, सांख्य को वर्णन करके, ये शरीर नहीं है आप, अंतवंता इमे देह नित्य शोक्त शरीर ही न, ऐसे शरीर जो अंत होने वाला है उसको क्यों प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं। तो और अभी भगवान सांख्य को वर्णन किए, तो श्रील प्रभुपाद हम लोगों ने चर्चा किया तीन प्रकार के सांख्य होते हैं, सांख्य दर्शन कौन कौन से हैं, तीन प्रकार के सांख्य दर्शन बताइए। पहले हम लोगों ने चर्चा किया था ना, तीनों सांख्य का कौन बताएंगे, कौन तीन है, तीन सांख्य दर्शन, ठीक है। तो ऐसे तीन प्रकार के सांख्य सब लोगों ने सुना जोर से, तीन प्रकार के सांख्य दर्शन बोले, आप बोले ऐसा एक चार्ट बनाइए अभी तुरंत, अभी चार्ट बनाइए आपके इसमें तीन प्रकार के सांख्य दर्शन, तो पहला दूसरा ऐसे चार्ट बनाइए। समझ में आ गया कैसे बनाना चाहिए, ऊपर टाइटल लिखना है तीन प्रकार के सांख्य दर्शन, और ऐसे तीन एरो कीजिए उसको। समझ में आ गया मनोहर कैसे तीन चार्ट बनाना चाहिए, तीन प्रकार के सांख्य दर्शन ऐसे लिखना है और उसको ऐसा एक एरो लिखना है और ऐसे कर काट के फिर तीन बाघ। तीन प्रकार के सांख्य दर्शन, तो पहला वाला कौन सा है बताइए, जो नास्तिक कपिल के सांख्य, और दूसरा है भगवान के अवतार देवहूति पुत्र कपिल देव के सांख्य, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण ने जो वर्णन किया हुआ वो सांख्य। तीसरा लिख दे सभी लोग, कौन कौन से तीन बताओ के सांख्य, और तो तो भगवान ने अर्जुन ने अर्जुन को बताया हुआ सांख्य कहाँ पर वर्णन हुआ है? 11 से 30 उसके नीचे लिख दीजिए उसको। और कपिल देव कहाँ पर वर्णन किए है? 3रे स्कंद। कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक चाहिए मुझे अभी तुरंत बताइए, कहाँ पर वर्णन किए कि कौन से अध्याय से लेकर किस कौन से अध्याय तक? श्योर और इमेजिनेशन, कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक, कौन से स्कंद में है अभी? 3.2 कैंटो में। कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक? लेकिन पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये भगवद गीता में बताया गया। भगवद गीता का सभी रेफरेंसेस हमें पता होना चाहिए ना, है कि नहीं? कहाँ पर क्या है करके। सो 26 से लेकर 33 तक। अध्याय 26 से लेकर 33वें अध्याय तक। जस्ट कंफर्म दैट वंस मोर, आई आल्सो कंफर्म। 3rd कैंटो आई थिंक 22nd, आई थिंक 22nd टू 31 चैप्टर्स। सो इट इज 22nd टू 33 और 26 टू 33 चक 11, आई थिंक 11 चैप्टर्स ठीक है। और वो कपिल का सांख्य दर्शन किस में आता है? वो कौन से दर्शन हम लोगों ने चार्ट बनाया था ना पहले, किस में आता है वो? जो षट दर्शन है वेदों के, जो षट दर्शन है उनकी उसमें आता है। अंत में क्या है वो? अनास्तिक ही है, वो भी नास्तिक ही है। हालांकि उनको आस्तिक आस्तिक दर्शन माना जाता है, लेकिन फिर भी लेकिन थोड़ा हमें अंदर भी जाना चाहिए। वो सिर्फ इंडेक्स नहीं देखना, क्योंकि 25 से 33 तो 26 में ही 25 लिखे उसको। ओके, और हो गया। ये तीन प्रकार के सांख्य दर्शन है। ये जो कपिल के अनुयायी हैं, नास्तिक कपिल के अनुयायी हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण वो जो सांख्य दर्शन, उनका जो सांख्य दर्शन है वो भगवद गीता में वर्णन किया है। लेकिन प्रॉपर यहाँ पर कहते हैं कि उससे कुछ लेना देना, ये जो सांख्य दर्शन है उससे कुछ लेना देना नहीं है। और जो भगवान कपिल देव वर्णन करते हैं उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, ये भी अलग है। फिर भी अंत में क्या होता है तो इसको अध्ययन करके हम लोग भक्ति में लग जाते हैं, तो वो भी तो भगवान कपिल के समान हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये तीनों अंतर है, तीनों अलग अलग है ये, ठीक है। भगवान कपिल और भगवान कृष्ण के जो सांख्य में क्या अंतर है बताइए? ये तीनों दर्शन में क्या अंतर है, तीनों दर्शन में क्या अंतर है? तीनों दर्शन में क्या अंतर है? और नास्तिक कपिल क्या वर्णन करते हैं? हम लोगों ने चर्चा किया ना, तो नास्तिक कपिल 24 तत्वों को वर्णन करते हैं, लेकिन अंत में क्या है वो 28वें श्लोक के तात्पर्य में हम लोगों ने चर्चा किया ना, कल शाम को ही चर्चा किया। अंत में परमाणु के रूप में रह जाते हैं, पहले व्यक्त अव्यक्त में रहता है, फिर व्यक्त हो जाता है, फिर से अव्यक्त रूप में वो स्थित हो जाता है, तो परमाणु के रूप में रह जाते हैं सभी भौतिक तत्व। और भगवान के भगवान कपिल के दर्शन क्या है, 24 तत्व है, लेकिन उसके आधार क्या है, आध्यात्मिक वस्तु है, वही भगवान परमात्मा है और जीवात्मा उनके अंश, तो वो आधार है, तो वो अंतर है भगवान कपिल के दर्शन में और नास्तिक कपिल के दर्शन। समझ में आ गया, नास्तिक कपिल भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, वह आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, तो इसके कारण वो नास्तिक है ना, तो ये अंतर है। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में क्या है, वो विश्लेषणात्मक आत्मा के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो वो जो कपिल देव ने भगवान ने सांख्य दर्शन को बताया, अंत में धीरे धीरे वो इस स्तर पर तक आ जाता है, आत्मा को जानना, परमात्मा के जानना, तो अंत में वो ऐसे आता है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो ये उसका परिपूर्णता है, जो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं उसका परिपूर्णता है, उस सांख्य का परिपूर्णता है, कपिल देव ने जो वर्णन किया उस सांख्य का परिपूर्णता है ये, तो ये सब अंतर है। ठीक है, तो इस श्लोक के ये जो शब्द पहली बार आया है यहाँ पर सांख्य, और बुद्धि योग भी पहली बार ये आता है, और योग भी पहली बार आता है ये शब्द भगवद्गीता में, योग सांख्य योग बुद्धि योग सभी ये शब्द पहली बार आ रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि अभी इसके पहले जो वर्णन किए भगवान वो इंद्र तृप्ति के आधार पर था, आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, राज्य भोग सुख प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से भगवान जो वर्णन करने वाले हैं वो इंद्र तृप्ति के बारे में नहीं, इंद्र तृप्ति को खंडन करेंगे, भगवान इंद्र तृप्ति को खंडन करेंगे, और कैसे योग मतलब भगवान को हमारे कर्मों को जोड़ना या कर्म फलों को जोड़ना, उसके बारे में वो बताएंगे। तो सांख्य ये पहली बार यहाँ पर आ रहा है, इस श्लोक के आधार पर, ये शब्द के आधार पर ही इस अध्याय को सांख्य योग करके नाम दिया जाता है संस्कृत भाषा में, कई आचार्यों ने भी किया, लेकिन मेरे अनुसार, मेरे समझ के अनुसार जो प्रभुपाद जी ने जो शीर्षक दिया है वो भक्ति विनोद ठाकुर के सो टीका के आधार पर कि गीता सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, अंग्रेजी भाषा में वो देते हैं ना, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, तो वो परिपूर्ण उसका शीर्षक है इस अध्याय का, क्योंकि सांख्य आप बताएंगे तो सिर्फ सांख्य ही नहीं बोल रहे यहाँ पर, हालांकि वो प्रमुख विषय है, इस अध्याय का प्रमुख विषय सांख्य है, इसके आधार पर वो लोग सांख्य देते हैं, लेकिन ये जो प्रभुपाद जी ने शीर्षक दिया है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, वो पूरा अध्याय को वो सार रूप में प्रस्तुत करता है, वो और हमें समझाता है कि ये जो दूसरा अध्याय क्या है, पूरा भगवद्गीता का सार है, गीता का सार, तो इसलिए वो परिपूर्ण तो शीर्षक है जो प्रभुपाद जी ने दिया इस अध्याय का शीर्षक। तो बुद्धि योग, बुद्धि सांख्य, एषाते विहिते विहिता सांख्य बुद्धिर्योग त्विमं सुनो, अभी बुद्धि योग के बारे में सुनो ये अर्जुन बोलते हैं, बुद्ध्यायुक्त तो इस बुद्धि योग में लगने के बाद कर्म बंधन प्रहासि, कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, तो बुद्धि योग को बारे में सुनने के लिए अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, तो ताकि उनको प्रेरणा आ जाए इसके बारे में श्रवण करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, तो अभी बुद्धि योग क्या है ये, तो शिल योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, परम के साथ जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना, हमारे संबंध को जोड़ना, हमारे कार्यों को जोड़ना, इसको योग कहते हैं। और बुद्धि योग मतलब जो ज्ञान भगवान ने सांख्य का ज्ञान दिया उसके आधार पर हम लोग कार्य करते हैं उस ज्ञान या उसको। तो बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, तो उस ज्ञान को सुनकर हम लोग, हमारे बुद्धि विकसित होता है। कैसे बुद्धि विकसित होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हमें शरीर का पालन पोषण के लिए जीवन बिताना नहीं चाहिए जैसे अन्य पशु करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आत्मा के बारे में कार्य करना चाहिए, आत्मा के संबंध में कार्य करना चाहिए। ऐसे जब बुद्धि उसके आधार पर जो कार्य करते हैं उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में तो कहते हैं कि बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग, क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते। वहां पर ये बुद्धि योग शब्द आता है उस श्लोक में, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, वो चतुर्श्लोकी भगवद्गीता का एक श्लोक है वो। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो जो हमेशा मेरा भजन में लगे रहते हैं वो बहुत ही प्रीतिपूर्वक मेरा भक्ति सेवा करते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ या वो बुद्धि योग में लग जाते हैं। तो ऐसे लगने से क्या हो जाता है, वो मेरे पास आ जाते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसका अर्थ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बुद्धि योग का अर्थ होता है भक्ति योग, और कभी कभी वो कर्म योग भी बोलते हैं, बुद्धि योग और कर्म योग। इन अदर वर्ड्स, प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस ओनली फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद वो कहते हैं उसको कर्म योग भी कहते हैं। और वो विजडम एंड ड्यूटी ऐसे शब्द आते हैं यहाँ पर इस तात्पर्य में। विजडम मतलब ज्ञान और ड्यूटी मतलब कर्तव्य। ज्ञान और कर्तव्य के आधार पर कर्म करना, उसको बुद्धि योग कहते हैं। हम चर्चा कर रहे थे ना, पहले सांख्य का वर्णन किया उन्होंने, उसके बाद कर्तव्य के, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय धर्म के बारे में, स्वधर्म के बारे में वर्णन किया। दोनों मिलकर क्या हो जाता है, बुद्धि योग हो जाता है। तो स्वधर्म क्या है, वो लोग स्वधर्म को ऊंचा लोग जाने के लिए भी कर सकते हैं ऐसे ना, इसलिए आप स्वर्ग प्राप्त करोगे, ऐसे भगवान ने पिछले विभाग में चर्चा किया भगवान ने। सो लेकिन स्वधर्म को सिर्फ हमें ऊंचे लोग या ऊंचा भौतिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए करना नहीं चाहिए, लेकिन एक आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर उसको करना चाहिए। अंत में उसको भगवान को जोड़ना चाहिए, उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो वही भक्ति योग है। भक्ति योग में क्या करते हैं हम लोग, भगवान को के लिए सब कुछ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं हम लोग, इसलिए वो भी बुद्धि योग है। लेकिन अन्य जगह भी प्रभुपाद उसका अलग अर्थ देते हैं। योग मतलब क्या है, वो आध्यात्मिक मार्ग को योग करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आत्मा को भगवान को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं उसमें, तो वही मार्ग है योग का मार्ग। और क्योंकि भगवान को जोड़ना होता है इसलिए उसको भक्ति योग भी कहते हैं, और वही बुद्धि योग भी है, क्योंकि भक्ति योग और बुद्धि योग दोनों में अंतर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद वो ज्ञान के तलवार जो ग्रंथ है, ज्ञान के तलवार, उसमें वह बुद्धि योग का वर्णन करते हैं। जब बुद्धि योग और ये योग का जो है या हम लोग बुद्धि योग को बाद में आएंगे, योग का जो प्रक्रिया है वो एक सीढ़ी से तुलना की गई। 6वें अध्याय के 3रे श्लोक के तात्पर्य में आप पढ़े देखेंगे तो वो एक सीढ़ी से तुलना की गई है। आरंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक वो एक सीढ़ी है। वो हम लोग बद्ध अवस्था में जो रहते हैं वहां से लेकर जो परिपूर्णता प्राप्त करते योग में, वो एक सीढ़ी के समान है, ऐसे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। तो वो आरंभिक अवस्था को योग रूढ़ कहते हैं, योग रुरुक्ष कहते हैं, और जो अंतिम अवस्था को योगारूढ़ कहते हैं। तो एक सीढ़ी है वो, और भगवद गीता में अलग अलग इस दर्शन को, इस परिभाषा, योग का परिभाषा हम लोग लेंगे तो भगवद गीता में अलग अलग योग पद्धति में अलग अलग मार्ग नहीं बताया है ना। वो एक ही मार्ग बताया उन्होंने, सीढ़ी मतलब वो एक ही मार्ग होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग मार्ग होता है कि नहीं। सीढ़ी मतलब एक ही मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग नहीं होते। भगवद गीता में अलग अलग मार्गों को नहीं बताया, यथा मत तथा पथ नहीं बताया। आप जो भी मार्ग स्वीकार करो अंत में एक ही में पहुंच जाओगे, ऐसे ऐसे नहीं बताया गया। तो एक ही मार्ग, योग मतलब योग का जो मार्ग है वो एक ही मार्ग है, वो एक सीढ़ी के समान है। लेकिन जब वो व्यक्ति अलग अलग स्तर पर रहता है तो उस स्तर के अनुसार उस योग को अलग अलग नाम दिया गया है। समझ में आ गया? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बुद्धि योगा परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विथ कर्म एक्शन, तो उसको कर्म योग कहते हैं, या भक्ति योग या योग को जो कर्म के संबंध में करते हैं उसको कर्म योग कहते हैं। और जो योग वो रिनाउंसिएशन थ्रू विजडम में, इसको बुद्धि योग कहते हैं। पूरा जो योग का जो मार्ग है या योग का जो सीढ़ी है उसको बुद्धि योग कहते हैं, और उसी को योग कहते हैं और उसी को ही भक्ति योग कहते हैं। तो जब बुद्धि योग को कर्म के संबंध में या योग को कर्म के संबंध में हम लोग कहते हैं, वो कैसे भक्ति योग है? समझ में आ गया? कैसे भक्ति योग समझ में आ गया? योग तो समझ में आ गया, योग मतलब एक सीढ़ी, भगवान से जोड़ना है, वो सीढ़ी है, एक ही मार्ग है वो, एक सीढ़ी के समान है, तो वो योग। और दूसरा चीज है वो कैसे भक्ति योग है, योग ही भक्ति योग कैसे है? क्योंकि भगवान के संबंध में कार्य कर रहे हैं, भगवान को जोड़ रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं भक्ति योग कहते हैं, है ना। तो भगवान में संबंध में जो भी किया जाता है उसको भक्ति बन जाता है, तो इसलिए उसको भक्ति योग भी कहते हैं। और तो उसको बुद्धि योग ऐसे ज्ञान के तलवार जो ग्रंथ में वो वर्णन करते हैं, इस योग को ही बुद्धि योग कहते हैं। जब बुद्धि योग कर्म के संबंध में, योग या भक्ति योग या बुद्धि योग को कर्म के संबंध में किया जाता है उसको कर्म योग कहते हैं। जब उसी को ज्ञान के अनुशीलन के संबंध में, जो फिलोसॉफिकल सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण से परम सत्य को ढूंढते हैं, तो परम सत्य को ढूंढना चाहिए, जब ढूंढते हैं तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान के संबंध में परम सत्य को ढूंढने के जो ज्ञान है उसके संबंध में जब योग को किया जाता है या भक्ति योग या बुद्धि योग किया जाता है तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जब उसको ऐसे अष्टांग योग पद्धति के द्वारा किया जाता है, अपने आप को भगवान से संबंध जोड़ते हैं हम लोग, उसको अष्टांग योग कहते हैं या ध्यान योग कहते हैं। तो जब उसको शुद्ध भक्ति भावना से किया जाता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, उसको ही भक्ति योग कहते हैं या शुद्ध योग, शुद्ध भक्ति कहते हैं। वो बुद्धि योग भक्ति योग जो पूरा प्रक्रिया है उसके परिपूर्ण अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है, तो उसको भक्ति योग कहते हैं या शुद्ध भक्ति कहते हैं। ये अन्य सभी, क्योंकि ये सब पूरा भक्ति योग है, ये इसके कारण अलग अलग चीजों का प्रामुख्यता होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, वो मिश्र भक्ति भी कहते हैं उसको। जब कर्म प्रामुख्यता होता है योग पद्धति में, जब लगे रहते हैं कर्म प्रामुख्यता रहता है तो क्या हो जाता है, वो कर्म मिश्र भक्ति हो जाता है। जब ज्ञान प्रमुख हो जाता है तो उसको ज्ञान मिश्र कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और जब योग या अष्टांग योग या ध्यान योग का मिश्रण हो जाता है तो ज्ञान मिश्र योग मिश्र कहते हैं। तो अभी देखिए आप, एक शब्द को अलग अलग चीजों को वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। जैसे उदाहरण तौर पर भक्ति योग, वो सर्वोच्च स्तर भी है, वो योग पद्धति का, योग मार्ग का सर्वोच्च स्तर भी है, और पूरा उसको भी भक्ति योग कहते हैं, क्योंकि सब कुछ अंत में भगवान को जोड़ रहे हैं, हाँ है ना। तो और योग शब्द है, उसको कभी कभी योग मिश्र भक्ति, यहाँ पर वो ध्यान मिश्र भक्ति लिखा है, एक्चुअली इट शुड बी योग मिश्र भक्ति, आई हैव रिटन योग मिश्र भक्ति, तो उसको भी योग कहते हैं, लेकिन पूरा प्रक्रिया को भी योग कहते हैं। जैसे हम लोग कर्म, कर्म शब्द कैसे उपयोग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म कह सकते हैं, लेकिन विशेष अर्थ भी होता है कर्म का, पुण्य कर्म को कर्म कहते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म, ऐसे भगवान वर्णन करते हैं ना उस श्लोक में, चौथे अध्याय में। तो कभी कभी एक जो शब्द है अलग अलग चीजों को वो इंगित करता है, इसलिए हमें विचलित नहीं, ये अच्छी तरह से जान लिया तो हम लोग इस भगवद गीता को सही सही हम लोग जान सकते हैं। तो ये अलग अलग शब्दों को अलग अलग चीजों से जब इंगित किया जाता है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, तो वो संशय लेकर आएगा हमें, तो ऐसे समझना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे हिमालय की पर्वत पहाड़ियां, हिमालय पर्वत पहाड़ियां कहते हैं हम लोग, हिमालय, जब हम लोग हिमालय बोलते हैं सिर्फ एक ही जो शिखर को हम लोग इंगित नहीं कर रहे, वहां पर बहुत सारे वो श्रृंखला है, शिखरों का श्रृंखला है। तो इस माउंटेन रेंज अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ना, शिखरों का श्रृंखला है वो, हिमालयन माउंटेन रेंज ऐसे कहते हैं। तो बहुत सारे शिखर है वहां पर, लेकिन वो सबको एक एक नाम देते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज या तो या विंध्याचल, और दूसरा है विंध्या माउंटेन रेंज, सह्याद्री माउंटेन रेंज, और नीलगिरी माउंटेन रेंज, ऐसे बहुत सारा है, वहाँ पर कई सारे पहाड़ियाँ होते, पहाड़ होते हैं, तो एक ही पहाड़ नहीं होता है। तो वैसे सबको क्या बोलते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज, मतलब बुद्धि योग, योग या भक्ति योग कहते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग शिखर होते हैं, ऐसे अलग अलग पहाड़ होते हैं, उसको कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग या ध्यान योग या भक्ति योग कहते हैं, और ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र या योग मिश्र भक्ति या शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ पर यू नो केटू है, कंचनजुंगा है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या है, सर्वोच्च शिखर है, वो शुद्ध भक्ति है, समझ में आ गया। और इन चीजों को भी जब हम लोग भक्ति में उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो भी भक्ति के गौण भक्ति के अंग होते हैं, हालांकि सीधा भक्ति नहीं है वो, लेकिन गौण भक्ति, वो मिश्र भक्ति नहीं है। जैसे वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम क्या है, गुण कर्म, कर्म कर्म के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार इसको विभाजित किया गया, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, कर्मयोग है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, वो कर्मयोग है, क्योंकि कर्म के अनुसार उसको विभाजित किया गया है। स्वधर्म क्या होता है, कर्मयोग होता है, कर्म धर्म और वर्णाश्रम ये सभी एक ही चीज को वर्णन करते हैं, लेकिन जब हम उसको भक्ति में उपयोग कर देते हैं तो वो भक्ति का अंग बन जाते हैं, समझ में आ गया। तो इसलिए पूरा ये भक्ति है, तो हमें इसलिए उसको देखना चाहिए कि वो ज्यादा प्रामुख्यता नहीं देना चाहिए। अभी हम लोग सुबह क्या कर रहे हैं, कुछ योगासना कर रहे हैं, योगासन अष्टांग योग का एक अंग है ना, हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग भगवान को अच्छा सेवा करेंगे, तो वो भी एक भक्ति का अंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दिन भर वही करना मतलब वो योग मिश्र भक्ति है। उसको इसके किए बिना मैं भक्ति में प्रगति नहीं करूंगा, ऐसे सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा भक्ति इसके ऊपर ही निर्भर है, ये नहीं करूंगा तो होगा ही नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन उसको कर सकते हैं, है ना, प्रामुख्यता नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे होता है। तो हम लोग छठे अध्याय का तीसरा श्लोक निकाले, उसको थोड़ा पढ़ेंगे ताकि ये समझ में आ जाए। कोई पढ़ सकते है?
विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है, और इसे तीन भागों में विभाजन किया जा सकता है, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भागों को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा।
यहाँ पर लिख लीजिए, आरम्भ में योगारूढ़ है ना, प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं ना, ये पूरा सबको मिला के योग कहते हैं। समझ में आ गए क्लियरली, ये सब मिला के क्या बोलता है, होता है योग होता है ना। ये सब मिलके क्या हो जाता है, योग होता है ना, वो याद रखना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये पूरा सर्कल बना के इसके ऊपर क्या लिख दिया, हम लोगों ने योग लिख दिया। समझ में आ रहा है, ये पूरा सर्कल बना के हम लोग यहाँ पर योग लिख दिया, क्योंकि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इस तात्पर्य में, कुल मिला के सब योग होते हैं। तो और क्योंकि योग मतलब भगवान को जोड़ना होता है, इसलिए उसको भक्ति योग भी कहा गया। वो 60 तो पढ़ लिया ना, हो गया पूरा, पहला पैराग्राफ हो गया ना, दूसरा पैराग्राफ देखिए क्या है।
जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों
को छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग अष्टांग योग से संबंधित हैं। वहां पर तीन ही योग का नाम दिया ना, क्योंकि वो ध्यान योग में अष्टांग योग भी आ जाता है, ज्ञान योग में अष्टांग योग भी आ जाता है, क्योंकि वो दोनों कभी कभी वो इंपर्सनल हो जाता है ना, इसलिए कर्म योग नहीं दिया, दूसरे जगह कर्म योग दे दिया, लेकिन अष्टांग योग। सो फिर एक और यहाँ पर रेफरेंस लिखने से 6.46 छठा अध्याय का 46वां श्लोक, वो तात्पर्य पढ़िए उसको। यू कैन रीड, यू हैव इंग्लिश।
जो बात
क्या?
जब हम योग का नाम लेते हैं,
सुनिए 646
जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जुड़ने की बात करते हैं।
देख रहे हैं सभी लोग, देख रहे हैं।
विभिन्न अभ्यास करता है इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार।
तो जब योग का बात करते हैं तो उसको परम सत्य को जोड़ना होता है। और दूसरा सेंटेंस, सच प्रोसेस इज नेम डिफरेंट। दूसरा वाक्य
विभिन्न अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते।
तो यही योग जो है, अलग अलग लोगों ने जब उसको अलग अलग मेथड वो किया है तो अलग अलग नाम हो जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। फिर बढ़िया, फिर उनको वो वर्णन करते हैं क्या क्या है।
जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब ये भगवान की भक्ति से संबंधित है तो भक्ति योग कहलाती है। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावना मृत समस्त योगों की परम सिद्धि है।
तो यह सर्वोच्च सिद्धि है। सभी अंत में क्या है, सभी योग वहां पर आना चाहिए। वो योग को वहां करके वहां पर नहीं आए, समय वही केवलम, तो सिर्फ समय हो जाता है। ये सभी योगों को करके अंत में इस सिद्धि तक नहीं आएंगे तो वो क्षमा है, ठीक है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग चूज बताते हैं। हम लोग क्रिया योग सिखा रहे हैं, हम लोग ध्यान योग सिखा रहे हैं, हम लोग अष्टांग योग सिखा रहे हैं, वो योग सिखा रहे हैं, लेकिन अंत में भक्ति के स्तर पर नहीं आएंगे, वो क्षमा ही होगी। ठीक है, पढ़िए आगे।
भक्ति योग पूर्ण आपका ज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसके अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है।
तो अगले श्लोक के वो कौन सा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ बोले, The culmination of all kinds of yoga practices.
भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का एक साधन मात्र है।
तो all other yoga but means to come to the point of bhakti in bhakti yoga.
योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग यानी।
तो अभी देखिए क्या बोल रहे हैं। योग का वास्तविक अर्थ क्या है, भक्ति योग बोल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने जो लिखा है यहाँ पर, क्यों लिखे हम लोग भक्ति योग, क्योंकि योग का वास्तविक अर्थ होता है भक्ति योग। ऑल अदर योगा सर प्रोग्रेशन,
अन्य सारे योग भक्ति योग भी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है।
ये लंबा रास्ता है ना?
निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है।
जब योग मतलब निष्काम कर्म योग, जब कर्म योग कहते हैं तो उसको निष्काम कर्म योग। जो सकाम कर्म होता है वो योग नहीं होता, क्योंकि योग मतलब इंद्र तप्त से पहले हमें अनासक्ति होना चाहिए। योग का अर्थ ही होगा योग इंद्रिय संयम, योग मतलब इंद्रियों को संयम करना। तो इंद्र तप्ति मतलब योग नहीं होता है। आजकल ये लोग कहते हैं ना कुछ योगासन करते हैं ताकि और अच्छी तरह से भोग, इंद्रिय भोग में लिप्त होने के लिए और उत्साह बनकर उत्साहित होकर, उसको योग नहीं कहते। योग मतलब इंद्रिय तंत्र से अनाशक्ति होना चाहिए, इंद्रिय भोग से अनाशक्ति होना चाहिए, तो वो योग होता है। हाँ कौन मैंने कहा, और
ये आरंभ यहाँ से होता है कर्म योग से,
क्योंकि पिछले विभाग में उन्होंने सकाम कर्म के बारे में वर्णन किया, ऊंचे लोक में जाना वगैरह, है ना। तो अभी उसको खंडन कर रहे, मतलब उसको वो निम्न है, वो उससे परे बोल रहे भगवान। पढ़ी अभी प्रभुपाद क्या वर्णन करेंगे, उसका कंपोनेंट्स बताएंगे, उसमें क्या क्या संयोजित है, हर एक योग में क्या क्या है, वो कैसे बढ़ता जाता है, अंत में भक्ति योग में सब कुछ है जो पिछले योगों में है। जैसे हम लोग सृष्टि के बारे में चर्चा कर रहे थे ना कल शाम को, पहले शब्द रहता है, शब्द से आकाश बनता है, आकाश से क्या बनता है, आकाश जो है वो स्पर्श से मिलकर वो हवा बन जाता है। तो इसका अर्थ है हवा में शब्द और स्पर्श, और शब्द और स्पर्श हवा प्लस रूप मिलकर अग्नि बन जाता है। शब्द स्पर्श और रूप, ये तीनों अग्नि के कंपोनेंट्स हैं। फिर अग्नि और अग्नि रस से मिलकर पानी बन जाता है। रसो हम अपसु कौनते सो, रस क्या है, पानी, रस, रस और अग्नि। अग्नि मतलब शब्द स्पर्श रूप रहता है अग्नि में, तो ये, और चौथा क्या है, रस मिलकर पानी बन जाता है। फिर पांचवा, पानी में गंध मिल गया तो वो पृथ्वी हो जाता है। तो ऐसे पांच तत्व होते हैं, ऐसे यहाँ पर ये सब मिलते 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 जाते हैं, इसको ना सृष्टि से तुलना कर सकते हैं। कर्मयोग पढ़िए उसको, कर्मयोग में क्या कहते हैं,
जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की प्रीति होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है।
ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए, हालांकि ये दोनों क्या है, अष्टांग योग और ज्ञान योग, उसमें निष्क्रियता रहता है ज्यादा, वो कभी कभी कर्म संन्यास लेते हैं, क्रिया नहीं रहता, लेकिन फिर भी ध्यान करना भी एक क्रिया है ना, कुछ तो एक्शन रहता है, योग अभ्यास करना, योगासन करना, वो तो बहुत कार्य होता है ना वहाँ पर, योगासन जब करते हैं तो बहुत कार्य होता है ना, है कि नहीं। तो शास्त्रों का अध्ययन करना भी क्या है, एक क्रिया है, मेंटल स्पेकुलेशन करना भी एक क्रिया है ना, उसमें भी कुछ एक्शन है।
जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार कर
मन लगाना मतलब मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है, वो बढ़ जाता है।
इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है।
तो उसमें सेवा और प्रेम रहता है, सेवा और प्रेम वो ज्यादा जुड़ जाता है, ठीक है, मैं निकट जाते हैं भगवान में, इसमें है ना, क्रिया है, ज्ञान है, वैराग्य है, ध्यान है, सेवा है और प्रेम है, ये सब हम लोग करते हैं। क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्यों ज्ञान का अध्ययन, आपका प्रश्न था ना, भक्ति मतलब वो अध्ययन करने का जरूरत नहीं है इसे, तो उसमें ये ज्ञान भी आ जाता है, ज्ञान का अनुशीलन भी आ जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा ज्ञान को स्वीकार नहीं करते जो परम सत्य अंत में क्या है, निराकार है, लेकिन भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, हमारे उनके साथ संबंध क्या है, हम कौन हैं, इसके बारे में ज्ञान अनुशीलन हम लोग भक्ति में भी करते हैं, और शास्त्रों से जो सुनते हैं वो भी ज्ञान आता है उससे भी, है गीता भागवत श्रवण करना वो भी भक्ति के अंग है। तो क्रिया, ज्ञान, वैराग, ज्ञान, सब सेवा, इसमें इसका अर्थ क्या होता है, भक्ति योग में सभी अन्य योग है, इसलिए ये क्या है, पूरा क्या है, भक्ति योग, समझा रहे, और उसी को बुद्धि योग कहते हैं प्रभुपाद, और ज्ञान के तलवार में क्या बोलते हैं, बुद्धि योग परफॉर्म इन कनेक्शन विद एक्शन, कर्म के संबंध में करते हैं तो वो वहां पर दूसरा पर, हम लोगों ने छठे अध्याय के तीसवें श्लोक में क्या देखा, कर्म के संबंध में जो योग को किया जाता है वो कर्म हो, इसके संबंध में वो उसका परिभाषा देते हैं इन सभी का,
लेकिन ज्ञान के तलवार व्रत में वो प्रभुपाद बुद्धि योग के संबंध में इनके परिभाषा देते हैं। जो बुद्धि योग कर्म के संबंध में किया जाता है उसको कर्म योग कहते हैं, जो बुद्धि योग ज्ञान के संबंध में किया जाता है तो उसको ज्ञान योग कहते हैं, और जो ज्ञान के संबंध में किया जाता है या अष्टांग योग उसको अष्टांग योग के संबंध अष्टांग योग कहते हैं, फिर भक्ति योग, अंत में वो क्या है बुद्धि योग मतलब भक्ति योग ही है कि नहीं। तो क्योंकि उसमें सभी योग आ जाते हैं बुद्धि योग में, तो इसलिए इस तात्पर्य में जब प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी वो बुद्धि योग या कर्म योग ऐसे तात्पर्य में इस तात्पर्य में लेते हैं, तो वो कर्म योग भी है या भक्ति योग भी है, वो पूरा है बुद्धि योग मतलब, समझ में आ गए योग है इंद्र तृप्ति के छोड़कर भगवान के संबंध में सब कुछ कर। इंद्र तृप्ति को बहुत काटा जाएगा अभी, क्योंकि योग मतलब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कोई अवसर नहीं है। ये क्लियर हो गया, तो इसको बुद्धि योग कहते हैं, ये पूरा जो है वो बुद्धि योग है कभी। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देखिए वो भगवान कर्म योग के बारे में बोलेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी उसको कृष्ण भावनामृत बोल देंगे। क्यों? क्योंकि अंत में उसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें ये सब आ जाता है, अंत में वो ही है भक्ति योग है या कर्म योग है बुद्धि योग है ना। तो जब प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं वो गलत नहीं है। वो कभी कभी लोग आके बोलेंगे ना आपके स्वामी जी तो सिर्फ कृष्ण या भक्ति और कृष्ण भक्ति के बारे में ही बताया, भगवान कुछ बोल रहे हैं वहाँ पर और आपके गुरुजी ने कुछ ऐसे बोल दिया बच्चा, लेकिन उनको पता नहीं बुद्धि योग मतलब ये सब, अंत में आप उसको कंपोनेंट्स देखेंगे तो अंत में वही है, वो सिर्फ मिश्र भक्ति है, बस भक्ति ही बोल रहे भगवान पूरा, लेकिन अलग अलग स्तर में बोल रहे, मिश्र भक्ति कर्म मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति योग मिश्र भक्ति, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है नहीं ना? कर्म प्रधान होता है इसलिए उसको कर्म मिश्र भक्ति बोलते। आप बहुत जोर से वर्णाश्रम को ज्यादा जोर दे रहे हैं, कब ऐसे हो जाता तो या नियत कर्म हमारा ये मेरा मेरे लिए यही ठीक है, यही मेरा स्वभाव यही है, लेकिन उस स्वभाव को शुद्ध करने के लिए भी कोशिश करो वो शुद्ध भक्ति हो जाता है ना। ज्यादा स्वभाव के ऊपर जोर देना, मेरा स्वभाव ऐसे है मेरा कर्म ऐसे है मैं वही सेवा करूंगा ऐसे है ना। एक काम करेंगे
कम से कम
12:41 वी आर सपोज टू टेक टिल 2:00 राइट, इसको पढ़ेंगे तात्पर्य फिर आप नोट कर लीजिए आपके प्रश्न को, नहीं तो रुक जाएगा सब कुछ। पढ़िए पढ़िए नहीं दूसरे अध्याय के ओ हमारा वो पढ़िए उसको 47वां।
हाथ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होगा।
क्यों? अन्य योगों के बारे में भगवान भगवद्गीता में बताया, फिर अंत में उनको भक्ति के बारे में बोलना है, तो क्यों ये सब बताया? यह यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अन्य योग ये भक्ति योगों को सूक्ष्मता से समझने के लिए अन्य योगों का वर्णन किया गया, ठीक है। कैसे हो सर्वोच्च भक्ति योग है, सभी योग क्या है, अंत में हमें भक्ति योग तक लेके आना चाहिए, ये सब समझने के लिए ये सब चीज वर्णन किए गए।
जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता करता वह कर्म योगी ज्ञान योगी राजयोगी ध्यान योगी।
कोई वो सीढ़ी में यहीं पर रुक गया उसको कर्म योगी बोला जाता है, और वो कोई यहाँ पर रुक गया तो उसको ज्ञान योगी बोला जाता है, तो रुकना नहीं चाहिए है?
आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भारती पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है,
तो हिमालय का उदाहरण दे रहे हैं ना यहाँ पर प्रभुपाद, सबसे ऊंचा है। ऊंचा हाँ
पढ़िए उसको, पढ़ लीजिए।
जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, कोई बिरला पाकिस्तान ही
बस 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 तो ये माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय का वो उदाहरण दे रहे हैं, है ना, हम लोगों ने चर्चा किया ना उसको। तो ये पूरा योग, बुद्धि योग या भक्ति योग क्या है, हिमालय माउंटेन रेंज, उसके भी अलग अलग शिखर होते हैं। तो इसको याद रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हिमालय को, ये जो उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पर इस तात्पर्य में, उसको याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वो पढ़िए। तो ये बुद्धि योग हो गया, अभी भगवान इसके बारे में बोलने वाले हैं। इसको इसमें लगने के कारण कर्म बंधन से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य पढ़ लीजिए एक बार, ललित कृष्ण प्रभु पढ़िए अभी।
जो आत्मा की वास्तविक प्रगति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, आत्म का जीवन करने का प्रस्ताव उनके दृष्टि पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुला कर उनसे दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजयोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वे अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत का इंद्र व्यक्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र व्यक्ति के धातक पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, ये भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारे
संक्षेप में वो जो सांख्य का वर्णन किया प्रभुपाद यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं संक्षेप में उसको।
शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, तो विरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्मा प्रवेश कर ली। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मान के रहते हैं। इस मानसिकता के चरण सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय में मोहकांति पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई आत्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले
है ना इंद्र तृप्ति को खंडन किया जा रहा है कि नहीं।
अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते अहम चार्यमाम त्वं प्रपन्नम्, फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे। तो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संभव भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भाव में स्थित होता है वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग ये अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ये भक्ति की विशुद्ध ज्ञान भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंद में धाम में पहुँच सकते हैं। इस प्रकार श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्चित अनिश्चित वाणी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वरहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरलता नहीं है। यह सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धियों में कर्मयोग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगों तक बाला प्रवदंती न पंडिता।
ये पांचवे अध्याय के चौथे श्लोक है।
निसंदेह अनिश्चयवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धि व्यक्तियों का दावा है कि गीता में अनिश्चयवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है।
समझ में आ गए, क्योंकि उसका परिपूर्णता जो कपिल देव परिपूर्णता वो जो सांख्य का वर्णन करते हैं उसका परिपूर्ण अवस्था क्या है, भक्ति योग है, इसलिए वो दोनों एक ही है बोलो। तो वो भगवदगीता में उसके बारे में वर्णन आएगा पांचवें अध्याय में। सांख्य योग पृथक बालो प्रवदंत्य विपश प्रवदंती न पंडित, वैसे वर्णन पांचवें अध्याय के चौथे श्लोक।
मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भाव मंडल में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम के बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की दिव्य वृत्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है।
तो आजकल हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना, डू समथिंग समो डू इट फॉर कृष्णा है ना। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहे जो पारिवारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म नहीं है। वो वहाँ पर भी वह वर्णन करते ज्ञान के तलवार में, आजकल जो कर्म योग के नाम से होता है, आजकल जो लोग कर्म करते हैं उससे और बुद्धि योग से बहुत अंतर है, ऐसे बोलते चौपर ज्ञान के तलवार है ना। तो आजकल यही प्रचार चल रहा है हमारे आंदोलन में भी कि जो भी कर्म करो वो सब ठीक है, वो भी कर्म योग है या वो भी बुद्धि योग है, वो भी भक्ति है, किसी न किसी तरह उसको भगवान की तरह ऐसा कल्पना करो आप, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होते, ठीक है।
बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दीर्घ
तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्यास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। पिछले श्लोक में भगवान वो क्या कहते, कर्म बंधम रहस्यसि, कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसे बताया था उन्होंने। तो ये भक्ति योग और उसका क्या लाभ है भगवान बोल रहे, ताकि अर्जुन को प्रेरणा मिले उसमें कर्म करने के लिए, बुद्धि योग करने के लिए। क्या बोलते हैं, नेहा विक्रम नाश्वस्ति, तो इसमें कोई हानि नहीं है और न ही ह्रास, प्रत्यवायो न विद्यते। सो प्रत्यवाय मतलब ह्रास, वो कभी घटता नहीं है, कम होता नहीं है वो। तो पहले हानि नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है, तो भौतिक जगत में जो भी कर्म करते हैं हम लोग यशस्वी होने के लिए या फल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, वो हानि हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। तो आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो दो तीन सेमेस्टर खत्म किए फिर छोड़ दिए, तो उसका लाभ नहीं होगा। या एक ही सेमेस्टर में दो तीन महीने गए लेकिन अंत में एग्जाम नहीं दिया और उसका पत्र नहीं प्राप्त किया, रिजल्ट नहीं प्राप्त किया, तो क्या हो जाता है, वो हानि हो जाता है। इसका अर्थ होता है भौतिक जीवन में परिपूर्ण यशस्वी होने के लिए हम लोगों को 100% होना चाहिए, वो कार्य 100% होना चाहिए, तभी होता है वो। कर्म करने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपको मिलेगा, वो दूसरी बात है, आपका जो आपने आशा किया था उसका फल मिलेगा करके जरूरी नहीं है, क्योंकि अन्य चीज भी वहाँ पर लागू होते हैं। तो लेकिन इस मार्ग में, इस योग के मार्ग में, बुद्धि योग के मार्ग में या भक्ति योग में जो भी थोड़ा बहुत भी कर लिया, क्या हो जाता है, उसका फल हमें प्राप्त होता है, वो नष्ट नहीं होता है। और दूसरा है प्रत्यवायो न विद्यते, वो घटता नहीं है। जैसे आप बैंक में इतना सारा पैसा रख दिया और जैसे विड्रॉ करते जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो घटते जाता घटते जाता घटते जाता है, लेकिन ये कभी घटता, जितना आपने किया है वो पूंजी हमेशा के लिए बना रहेगा। तो वो पूंजी के द्वारा हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरा चीज यहाँ पर वर्णन करता है। और भगवान कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयम्। प्रभुपाद इसके उल्लेख करते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणामुजे हरेर, आपने भौतिक कार्य को त्याग कर क्या कर दिए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर परिपक्व न होने के कारण यहाँ पर भी पतन हो गया, तो फिर भी क्या लॉस है। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणामुजे हरेर भजन न पक्व तो पतन त्यदो हरि, यत्र कवद्र बुद्ध मुष्य किम को तो भजताम स्वधर्मतः। लेकिन एक व्यक्ति स्वधर्म को अच्छी तरह से पालन करता है लेकिन भक्ति नहीं करता है तो उसका क्या लाभ होगा, ऐसे यहाँ पर नारद मुनि ये व्यासदेव को बोल रहे थे। तो कभी आप लोगों ने सब त्याग करके आ गए ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आने के बाद आप भक्ति सेवा किया तो बहुत साल, फिर भी ब्रह्मचर्य आश्रम में कंटिन्यू नहीं किए तो उसका क्या लॉस होगा। आपने अच्छा प्रशिक्षण लिया भक्ति में और कितने सारा सेवा किया, कितना सारा प्रचार किया, कितने सारे पुस्तक वितरण किया, कितने सारे वैष्णवों का सेवा किया, तो इसका तो हमेशा आपके लिए लाभ रहेगा, है ना। क्या लोग बोलते हैं ये क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ये बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, है ना, तो ज्वाइन मत करो तुम्हें होगा नहीं, वो सब कहते हैं। लेकिन हमें भक्ति में उत्साह नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ लॉस नहीं होगा, वो हमेशा बना रहेगा। तो छठे अध्याय में इसके बारे में और विस्तार से वर्णन आता है। जब अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को तो इस योग पद्धति में जो लगा है लेकिन किसी न किसी वश उसको पूरा नहीं कर पाएगा तो उसका स्थिति क्या होगा, वो एक उदाहरण से उपमा से तुलना करते हैं कि आकाश में हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है हवा के कारण वो बहुत सारे बादल होते हैं, वो बादल के जो क्लस्टर होता है वो छोटा बादल उससे अलग होकर हवा उसको बह के लेके जाती है, तो फिर वो दूसरे जो बादल है उससे तो मिलती नहीं है तो वो अकेला हो जाते हैं। ऐसा ही ये व्यक्ति भौतिक जीवन को त्याग कर इस योग में योग मार्ग में लग गया, भक्ति के मार्ग में या कृष्ण भावनामृत के मार्ग में लग गया, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया, तो क्या होगा उसका स्थिति? ऐसे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। उसका स्थिति क्या है? वहाँ पर भी नहीं रह पाया उस बादल में भी, और दूसरे बादल में भी जोड़ नहीं पाया, बीच में ही उसका नष्ट हो गया। तो वैसे भौतिक सुख को भी प्राप्त नहीं किया, भौतिक जीवन में भी यश प्राप्त नहीं किया, और आध्यात्मिक जीवन में भी पूर्ति नहीं प्राप्त किया। तो भगवान उसके उत्तर में दो उत्तर देते हैं। एक उत्तर, जो थोड़ा प्रगति किया है उसका क्या होगा, और बहुत ज़्यादा प्रगति किया है उसका क्या होगा, उसके बारे में बताते। जो थोड़ा प्रगति किया है वो लोग क्या करते हैं, तो उस जीवन के अंत में वो ऊंचे लोकों में जाते हैं, ऊंचे स्वर्ग लोक में जाकर लंबे समय तक वहाँ पर सभी भौतिक सुख भोग है उसको प्राप्त करके फिर से इस भौतिक इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जन्म लेके एक एक ऐसे शुचि और बहुत ही अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। शुचि मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील परिवार, ब्राह्मण परिवार, या मतलब जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति कर रहे भक्त लोग उनके परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं ना यहाँ पर, जो भक्त लोगों के घर में जन्म लेते हैं वो, तो उनको आरंभ से ये भक्ति का वातावरण मिल जाता है। और अमीर परिवार में मतलब जीवनी के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता है, तो वो सिर्फ भक्ति करने में लग सकते हैं पूरा, तो ये सुविधा मिल जाती है। और जो ज़्यादा प्रगति करके वो उनका योग में स्टॉप हो गया, तो क्या हो जाता है, वो सीधा ऊंचे लोग भी जाने का जरूरत नहीं, सीधा वो ऐसे शुचि और श्रीमताम ये ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं। तो हम लोग ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि अभी बहुत किया है हम लोग, अभी अगले जीवन में उसका उसको उसको अगले जीवन में आरंभ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ऊंचे लोग, हमारा स्थिति तो उतना तो प्रगति नहीं किया हम लोग, तो ऊंचे लोक में जाएंगे तब तक कृष्ण भावनामृत आंदोलन हो या ना हो, इस कलयुग का प्रगति पर कलयुग भी बहुत प्रगति कर रहा है ना बहुत जोर से, तो मुश्किल हो जाएगा। या हम लोग मृत्यु के समय में कुछ ऐसा चीज का स्मरण कर दिए तो वो सियोनी में जाना पड़ेगा, वो भी होगा है ना, वो भी नियम है ना, है कि नहीं, वो नियम को भी हमें उसके संबंध में भी इसको समझना चाहिए। हालांकि भगवान ने बताया ऊंचे लोक में जाएगा, लेकिन उसके संबंध में भी देखना पड़ेगा ना, यम यम वापि स्मरण भावम तेज चंदे कले वरम थम तम ये वैदिक सदा तद्भाव, सदा ये निश्चित ही काम करेगा ये नियम, ऐसे बोलते हैं। तो पर जो भरत महाराज बहुत प्रगति किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी हिरण बने, फिर भी उसका लॉस नहीं हुआ, उन्होंने जो प्रगति किया वो हिरण के रूप में भी, उन्होंने जो भक्ति किया उसको स्मरण किया, उन्होंने उसका स्मरण था उनको, और इसलिए वो ऐसे महान संत जो ऋषि मुनि जो निवास करते थे वहीं पर रहते थे, उनका उच्चिष्ट लेते थे वो, और ऋषि मुनिगण जब प्रसाद ग्रहण करके जो अपने पत्ते पहनते थे उसको खाता था वो हिरण, ऐसे उसका लास्ट कभी नहीं होता है। प्रभुपाद अजामिल का भी उदाहरण देते हैं। अजामिल क्या है, वो प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलता है ये रैस्कल अजामिल, भगवान ऐसे बोल रहे, इसका अर्थ क्या है, नियम भगवान बोल रहे इस श्लोक में, ये रैस्कल अजामिल मेरा थोड़ा भक्ति किया आरंभ में और भूल गया मुझे, फिर भी मैं नहीं इसको छोड़ूंगा, ऐसे भगवान बोल रहे थे। तो वो क्या करते हैं, उसको प्रेरणा देते अपने पुत्र का नाम नारायण बोलने के लिए, नारायण नाम रखने के लिए, तो उसको ज्ञान होते हुए ना होते हुए भी वो भगवान को पुकार रहे, नारायण इधर आ जाओ, नारायण इधर आ, नारायण 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 करके बोल रहे, और मृत्यु के समय में भी नारायण का स्मरण कर रहा है। तो उसके कारण क्या हो गया, वो मुक्त हो गया। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्, त्रायते महतोभयात्, स्वल्प थोड़ा भी हम लोग इसमें प्रगति करेंगे सबसे बड़ा भय से मुक्त कर देता है। त्रायते महतोभयात्, सबसे बड़ा भय मतलब क्या है, तो ऐसे जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसमें बंद जाना, नीचे योनि में जाना, बार बार जन्म लेना अलग अलग योनि में, तो वो उस भय से मुक्त कर देता है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में अंत में बोल रहे, कम से कम मनुष्य जीवन तो निश्चित ही है बोलते, जो भक्ति में लग जाते हैं, कम से कम निश्चित ही है। तो ये इसका महत्व है, नहीं कि नहीं, उत्साह आ रहा है कि नहीं भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, ओ उत्साह निश्चयात दैव्यात तत्कर्म प्रवर्तनात्, वो रूप गोस्वामी का श्लोक है ना, उत्साह निश्चय धैर्यात, उस श्लोक में कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस हैविंग बिगन इट ड्रैग्स अस टू परफेक्शन, हमें परिपूर्णता के ओर खींच के लेके जाता है। भक्ति आरंभ कर दिया, अभी हो गया आपका, आपका मुक्ति का मार्ग खुल गया, अभी मुक्ति का जो दरवाजा है वो खुल गया, अभी मुक्ति क्या उससे भी श्रेष्ठ मिल जाता है। अभी आप भक्ति पे संपर्क में आ गए, कुछ भक्ति कर दिए, फिर आपका कभी पतन नहीं होगा, निश्चित ही। तो ये इसका महत्व है, ठीक है, पढ़िए तात्पर्य फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत सारा कवर करना है, 800 पेज है, 800 पेज।
कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में काम करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है, किंतु कृष्ण भावामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजाने में कृष्ण भावामृत ने अपने कर्तव्य का
1%
भद्र बुद्ध मुष्य किम
को वार्ता आपको बजाना प्रचलता स्वधर्मता, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण नाम का नाम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा, अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य कम होके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु इस भावरत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर की विनिष्ट शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः विष्ण भावनामृत पर ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। विष्णु ब्राह्मण के संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है।
व्यवसायात्मिका बुद्धिर्येके हा कुरुनंदन गौशाकाय नन्दाशा बुद्धयो, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है, एक होता है। एक गुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इस मार्ग का एक और महत्वपूर्ण क्या है, लक्षण क्या है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं इस मार्ग में, जो लग जाते हैं वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं लक्ष्य में। तो वो दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों होते हैं, इसके लिए यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, श्रद्धा, उनके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाता है। हम लोगों ने पहले सुना ना इसका महत्ता के बारे में, इसके पहले 2 श्लोकों में सुना सुनने के बाद उसमें श्रद्धा बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है इस मार्ग में, तो वो श्रद्धा अटूट हो गया तो क्या हो जाता है, इस मार्ग में वो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। श्रद्धा शब्द शब्दे विश्वास कहे सदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए। तो ऐसे श्रद्धा होना चाहिए, अटूट श्रद्धा, सदृढ़ निश्चय, विश्वास होना चाहिए कि इसको पालन करने से ही मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, अन्य कुछ करने का जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे अटूट श्रद्धा होना चाहिए। तो देश का सेवा करना, समाज का सेवा करना, परिवार का सेवा करना, वो करना, ये करना, ये सब करने की जो ही जरूरत नहीं है, ऐसे अटूट श्रद्धा रहना चाहिए। हम लोग दसवें है नाम अपराध में भी बोलते हैं ना, तो नाम में दसवां नाम अपराध क्या है बताइए, दसवां नाम अपराध कौन बताएंगे क्या है करके? तो हरिनाम में पूर्ण श्रद्धा ना होना, और इसके बारे में बहुत कुछ सुनने के बाद भी भौतिक आसक्तियों को बना के रखना, मुझे और भी भौतिक कर्म करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, तभी मैं जीवन परिपूर्ण होगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बस कृष्ण भक्ति ही करना है मेरा जीवन में, अन्य कुछ नहीं करना है बस। सो ऐसे विश्वास होना चाहिए, उसको श्रद्धा कहते हैं, इसको करने से ही मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसे हमें विश्वास होना चाहिए, तो इसको दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ का क्या अर्थ होता है? रेजोल्यूट इन पर्पज, इसका क्या अर्थ होता है? यही सर्व कर्म कृत हो, कृष्ण भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जीवन में कौन सा भी स्थिति हो, कोई भी है, ये मेरा जिम्मेदारी है, वो मेरा जिम्मेदारी है, वो है, ये है, और कुछ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ कृष्ण भक्ति कहले का सर्व कर्म कृत हो, इसको दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। तो वो कैसे होता है प्रभुपाद जी इस मार्ग में, वो दृढ़ प्रतिज्ञ कैसे होते हैं, इसके लिए गुरु के प्रति बहुत ही समर्पण भावना की जरूरत होता है, डेडिकेशन कहते हैं ना। तो दीक्षा मतलब आत्मसमर्पण, तो ऐसे होना चाहिए, तभी ये दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे हम लोग जीवन में। तो क्या है वो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए विशेष करके, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जीवन में उनको गुरु को उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, उन्होंने पता है क्या है वो, कैसे मैं आपका सेवा करूं, कैसे, वो कहते उन्होंने उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके तिरोभाव के कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक कत लिखा, उस कत में उन्होंने प्रश्न पूछा, आपके बहुत सारे शिष्य है, ब्रह्मचारी है और सन्यासी है, वो लोग आपका सीधा सेवा कर रहे हैं, मैं आपका सेवा कैसे करूं, ऐसे वो कहते। तो ऐसे प्रश्न पूछा उन्होंने, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके उत्तर में कहा, आपको क्या करना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में प्रचार करना चाहिए। तो वही आदेश उन्होंने पहले, जब उनको पहली बार प्रभुपाद जी ने मिले थे उसी समय पर भी उन्होंने दिया था, ये दूसरी बार उन्होंने दोहराया उसको। सो 1922 में उन्होंने पहली बार मिला गौड़िया मठ में, कलकत्ता के गौड़िया मठ में। और उस समय पर भी वही आदेश दिया था, और दूसरी बार भी जब 1936 तो 1937 के जनवरी के पहले दिन ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हो गया, उसका अर्थ है 36 में फिर से उन खत के रूप में उनको वही आदेश देते हैं। तो वो आदेश को उन्होंने जीवन बना दिया है ना, दृढ़ प्रतिज्ञ का यह अर्थ है, उसको पूरा करना है जीवन में, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। और विशेष करके श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य हमने चर्चा किया ना, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक टीका लिखा है इस भगवद्गीता के ऊपर, लिखे है कौन सा नाम है उस टीका का बताइए, सारार्थ, सारार्थ वर्षिणी, सारार्थ दर्शनी भागवत के ऊपर टीका है। तो शेवर ऑफ एसेंशियल मीनिंग्स, उसका अर्थ भी हमने बताया था ना। तो उस टीका में वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता है, जो गुरु के आदेश है उसको जीवन बनाना, तो उसको दृढ़ प्रतिज्ञा बोलते, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया, जो भी हो मैं उसको पूरा करूंगा, वही मेरा जीवन का लक्ष्य है, प्रलय भी हो या सृष्टि हो, सब कुछ विनाश हो या सब कुछ सुविधाजनक हो, किसी भी स्थिति में मैं उसको पालन करूंगा या उसको पूरा करूंगा, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तो उसको दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। तो वैसे ही हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञा हो सकते हैं, उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं, उस दृढ़ प्रतिज्ञा का ही व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसको जब मैंने पढ़ा तो मेरा मेरे गुरु के आदेश को पालन करने की जो इच्छा है वो और भी दृढ़ बन गया, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद, तो इसका अर्थ होता है हमें अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। तो विशेष करके इस कांड में श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को बढ़ाना है, सभी गुरु शिष्य सब लोग वही करते हैं क्योंकि वो संस्थापक आचार्य है, तो वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और कुछ नहीं है, मेरा इंद्र तृप्ति, मेरा परिवार और माय सेक्स लाइफ, उसके बारे में चिंता नहीं करना है हमें, व्हाट अबाउट माय सेक्स लाइफ, व्हाट अबाउट माय दिस, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में मेरा मैथुन जीवन के बारे में क्या है, उसके बारे में वो कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ कैसे प्रभुपाद जी के आंदोलन को बढ़ाना है, वही हमारा केंद्र होना चाहिए, इसको दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। तो पहले उसको समझना चाहिए, प्रभुपाद जी के आंदोलन को समझना चाहिए, इसलिए उनके ग्रंथों को हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब वो अजामिल को लेके आने के लिए वो यमदूत आ गए ना, तब क्यों वो नारायण करके पुकारा उन्होंने, वहाँ पर विष्णुदूत भी आ गए, तो जब विष्णुदूत आ गए तो विष्णुदूतों ने उनको रोका उनको, और उनको उनको पूछा आप लोग अपने आप को यमराज, जो धर्मराज है उनके सेवक मानते हैं, यमदूत हो, यमदूत यमराज के सेवक है ना वो लोग, तो धर्मराज आपके अनुसार धर्म का क्या परिभाषा है, ऐसे बोलते आपको ये जानना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, ऐसे पूछते। तो श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कहते हैं विष्णु दूतों द्वारा पूछा गया प्रश्न अति उपयुक्त था, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो उसे उस व्यक्ति के मंतव्य मिशन को जानना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में है उनके लिए ये उपदेश दे रहे प्रभुपाद, इसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं, इसको मिशन स्टेटमेंट। इसलिए कृष्ण भावनामृत के भक्तों को कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु के मिशन से पूर्णतया अवगत होना चाहिए, अन्यथा वे मूर्ख समझे जाएंगे। सारे भक्तों विशेषतया प्रचारकों को कृष्ण भावनामृत का जो दर्शन जानना चाहिए, जिससे प्रचार करते समय उन्हें अलक्षण तथा अपमान न सहना पड़े, ऐसे कहते हैं। तो ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी कि कैसे दूसरों को जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनकी शिक्षाओं को जानना चाहिए, उनका मिशन को जानना चाहिए। हम लोग प्रभुपाद जी को प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए उनके मिशन को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, वो नहीं जानेंगे कृष्ण भावनामृत, ये सभी ग्रंथों के आधार पर, ये दर्शन शास्त्र के आधार पर, उनके आंदोलन में रहकर भी उनके उनका सेवा हम लोग ठीक तरह से नहीं करेंगे, वी विल डू डिस सर्विस टू हिम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैसे हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, तो उसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद अन्य जगह भी ये उनके मिशन के बारे में वो वर्णन करते हैं। तो 6138 अभी जो अभी मैंने पढ़ा, क्या है ये समझ में ना रहा। दिस यू हैव रिटन फोर्थ स्कंद बट दिस इज थर्ड स्कैंड, मैं क्या समझ रहा हूँ वो समझ पता है मुझे मिल ही नहीं रहा श्लोक। किसी के पास है क्या चतुर्थ स्कंद? चतुर्थ स्कंद दूसरा भाग, इंग्लिश दे दीजिए। चौथा स्कंद आपने दिया था, दूसरा भाग
इंग्लिश दिया,
हिंदी में नहीं है चौथा स्कंद दूसरा भाग? नयन नयन मणि मंजरी, तो क्या पढ़ना चाहते हैं हम लोग? कैसे हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए गुरु के मिशन को, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को पालन करने के लिए। तो यहां पर नारद मुनि वो पुरंजन का कथा बता रहे हैं ना, प्राचीन परिषद को। वो पुरंजन का मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के बाद वो पुरंजनी थी, रानी थी, उसके साथ वो भी वो सहगमन कहते थे ना, वो पहले जमाने में क्या होता है, वो पत्नी भी उनके साथ ही मर जाती है, सती या सहगमन। तो वहां पर वर्णन करते हैं, हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये चौथे स्कंद के 28वां अध्याय के 50वां श्लोक, उसके तात्पर्य में वो पहले उसके सती के बारे में, सहमरण के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे भारत में अभी तक था। प्रभुपाद जी देते हैं 1936 में हम लोगों ने 2850 हाल ही अभी तक 1936 तक तो हमने देखा है कि एक साध्वी स्त्री ने अपने पति के साथ सहमरण ले लिया उन्होंने ऐसे, भारत में ऐसे होता था, लेकिन बीच ये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो उनको जो साध्वी स्त्री होती है उनको ऐसे प्रशिक्षण हुआ करता था, वो स्व इच्छा से वो लोग करते थे, तो बाध्य नहीं किया जाना चाहिए उसको, लेकिन आजकल तो उसको बाध्य किया गया, इसलिए ब्रिटिश सरकारों ने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके तात्पर्य में फिर आगे के भाग में प्रभुपाद लिखते हैं कि तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं देखिए, लोग इससे सुनकर, इससे सूचित होता है कि भक्त के पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्ण, इस्कॉन के माताओं को यह सुनाइए, भागवत क्या है उनको दिखाइए इसको, भागवत का अर्थ क्या होता है देखिए सब, है ना। तो लोगों को पता नहीं है भागवत क्या है करके तो ऐसे वो पुस कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, आगे क्या, आगे सुनिए, हमें भी कुछ शिक्षा मिल रही है। इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप में देने में असफल रहता है, इफ ही डज नॉट फुलफिल द मिशन ऑफ द गुरु, तो वह गुरु के साथ मर जाए, बेटर ही डाइज। हम प्रभुपाद जी के आंदोलन को, उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अच्छा है कि हम लोग मर जाए। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनके प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणत करे। तो प्रभुपाद जी सो मच वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए, भगवान भी वर्णाश्रम धर्म को ही स्थापित करने के लिए आते हैं, रोज यदा यदा ही धर्म जब बोलते हैं वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोलते हैं। उसके तात्पर्य में हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये भगवद्गीता इनके लिए है जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, भगवद्गीता भी नहीं समझेंगे तो वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं, भगवान उसके लिए आते हैं और गुरु भी आते हैं। प्रभुपाद जी भी चाहते थे हमारे जैसे भक्ति, कल भी हम लोगों ने सुना भक्ति विनोद ठाकुर भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी वो आदेश दिया उन्होंने दैव वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए। तो ऐसे सभी ये आचार्यों का ये आंदोलन है, ये उद्देश्य था, मंतव्य था, मिशन था वर्णाश्रम को, और भगवान कृष्ण का मिशन था ये तो। लेकिन हमारे भक्त आजकल क्या बोलते हैं, ये फ्यूचर आगे देखेंगे हम लोग इसको, बोलते हैं तो आगे देखेंगे इसको, तो ऐसे कहते हैं वो। तो उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म के पुनर्स्थापना के लिए आता है, ये आते हैं होना चाहिए ना, एवरीवेयर आता है आते हैं, इट शुड बी ना। अर्जुन को भी ऐसे है ना, दे हैव रिटन इट लाइक दैट बिकॉज दे आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश, यू नो यू डोंट गेट फ्लूरल देयर एक्चुअली। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि ये सब यू हैव टू नोट डाउन एंड वी शुड डू ऑल दिस चेंजेस। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणत करे, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। तो ये कृष्ण भावना, ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, ये दृढ़ क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञा का अर्थ होता है। आगे के तात्पर्य में भी उस भागवत के 51 का जो श्लोक के तात्पर्य है उसमें भी प्रभुपाद वहां पर ये श्लोक भी उल्लेख करते हैं वो। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, वह स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा है, वैदिक आदर्शन के अनुसार कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वा सुपर्ण सायुज सुखा सकाय भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सूर्य रूप में स्थित रहता है। भगवान सदैव इच्छुक रहता है कि क्या है, व्हाट इज दिस, रहता है व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट द प्रॉपर लैंग्वेज, स्टूपिड फिलोसफी, रहते हैं कि जीव उसके धाम वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों का भोगने का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु जब भी समय मिलता है तो वह उसे उपदेश भी देते हैं। आप प्रश्न पूछ रहे थे, किंतु जब भी समय मिलता है तो वह उसे उपदेश भी देते हैं कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह भगवान की ओर मुख मोड़े और उनका शरणागत बने। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है तो उसका यह संकल्प भगवान के दर्शन करने के समान होता है। जब हम लोग गुरु को आदेश करते हैं, बहुत बार लोग सोचते हैं ना, मुझे भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा है, कुछ करो, गुरु का सेवा करो। इसलिए इस श्लोक में 41वां श्लोक में व्यवसाय आत्मी का बुद्धि, ये श्लोक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी। वहाँ पर यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद नगति कतोपी, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ही लिखा था, हर रोज हम लोग उसको गाते हैं। गुरु को प्रसन्न करने से क्या होता है, हमें भगवान का भी प्रसन्न हो जाता है, उससे हमें अपना जो गति है उसको प्राप्त करते हैं। उनको प्रसन्न किए बिना हमें कोई गति को प्राप्त नहीं करते। मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, मैं राधा कुंड में जाऊँगा, भगवान को ढूंढूंगा, वहाँ पर वो करूँगा, ये करूँगा, ये पानी में डुबकी लगाऊँगा, वो कुंड में, ये कुंड में, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो जब कोई अपने गुरु के संदेश को अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है तो उसका यह संकल्प भगवान के दर्शन करने के समान होता है। जैसे कि पहले कहा गया है कि इसका अर्थ हुआ कि गुरु के आदेश भगवान से भेंट है, तो भगवान को मिलने के समान है वो, यह वाणी सेवा कहलाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद्गीता के व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक कुरुनंदना 241 श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों को सेवा करे, शिष्य को चाहिए कि जो गुरु आज्ञा देते उस पर दृढ़ रहे, इसी दिशा में चलकर वह भगवान का दर्शन करता है। भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तक कोई भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता, तब तक वह उन्हें उस रूप में नहीं देख सकता। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है तो वह किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान हृदय में स्थित है, अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंतकरण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता 10वें अध्याय के 10वें में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं योनमाम। अभी बुद्धि योग का ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये चीज वर्णन कर रहे हैं, जो निरंतर मेरे भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप में देना चाहता है तो वह तुरंत वाणी या वपु से परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। भगवान के दर्शन का यही रहस्य है। भगवान को वृंदावन की किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा, हम लोग वृंदावन की कुंज में ढूंढना चाहते हैं भगवान को, पहले गुरु को प्रसन्न करो, बाद में वृंदावन में ढूंढ सकते हो। तो कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों को पालन के नियम पर दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। इसीलिए श्रील बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा है, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्याद्वे दैवेन न पलति दिव्य किशोर मूर्तिः मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते सेवते स्मान् धर्मार्थकामा गतया समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हुआ तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूँ। जहाँ तक मुक्ति के प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरे सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है। देखिए कैसे है? और उसके साथ धर्म अर्थ तथा काम संबंधी में सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती है। यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ हो तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह न केवल भगवान का दर्शन करता है अभी तो मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहाँ तक भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे स्वतः आती है, जिस प्रकार रानी के पीछे दासी वहां जाती है। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती। सारे भौतिक सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती है। तो ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया। तो कैसे गुरु का सेवा करना चाहिए, हम लोग सातवें स्कंद में भी, सातवें स्कंद के 90वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी देखते हैं। क्या श्लोक है वो? वो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव को प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं इस भौतिक संपर्क में आने के बाद तो ऐसे पतित होता जा रहा था, लेकिन आपके जो शुद्ध भक्त है आकर मुझे क्या कर दिए, उद्धार कर दिए, तो इसलिए मैं कैसे उनका सेवा छोड़ सकता हूँ, ऐसे कहते हैं। तो एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामं अनुय प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसा सुरर्षिन भगवन् ग्रहीतः सोयं कतम नु विश्रजे तव प्रत्य सेवां। वो कहते हैं, हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं के संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। भौतिक इच्छाओं का कारण क्या है? वो क्या है भौतिक इच्छा? जो अंध कुआ, जो बहुत सारे सर्प है वहां पर, ऐसा है भौतिक इच्छाएं। तो उनको बढ़ाना नहीं चाहिए भौतिक इच्छा। किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दे दी, इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? ऐसे वो कहते हैं। तो ऐसे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकते हैं भक्ति के इस मार्ग में, जब गुरु के सेवा में। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ क्या है? तो हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं त्याग देना चाहिए और गुरु की सेवा में ही जीवन बनाना चाहिए हमारा जीवन। तो ऐसा सोचना चाहिए, इसके बारे में क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मुझे वो चाहिए, वो नहीं है, ये नहीं है। ऐसे हम लोग बहुत सारा चीज़, ये सब सर्प के कुएं में गिरते रहते हैं हम लोग भौतिक इच्छाओं के। तो ठीक है, तो इससे हम लोग व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि बन सकते हैं। पढ़िए उसको तात्पर्य।
श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जबकि कृष्ण भावना के कारण लग लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक दरअसल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तरह बुले का द्वेष नहीं रह जाता। कृष्ण ब्राह्मण की सर्वसिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग, कृष्ण ब्राह्मण की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण ब्राह्मण आगे व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर धारित है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत सुदुर्लभ जीव है। जो परिवार की जानता है कि वासुदेव कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। इस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों की जड़ पहुंच जाता है। उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात परिवार की समाज की मानवता की सर्व सेवा कर सकता है।
तो बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोग चिंतित, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा समाज का क्या होगा, मेरा देश का क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत सारे चीजों के बारे में हम सोचते हैं। और हमारे निजी भी बहुत सारे चीजें होते हैं, है ना। तो हम लोग सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कैसे मैं गुरु की सेवा करूँ उसके ऊपर। जब रामानुजाचार्य को यमुनाचार्य ने बुलाया, वो कांचीपुरम में रहते थे रामानुजाचार्य, और यमुनाचार्य तो श्रीरंगम में रहते थे। तो वो चाहते थे कि ये रामानुजाचार्य भक्त बने और आगे बढ़कर इस आंदोलन को बढ़ाए। तो उन्होंने अपने शिष्य को बुला भेजा, उन्होंने उसको लेकर आने के लिए, उनको लेकर आने के लिए। जब वो महापुर गए और गाँव के बाहर उनको मिले, तो जब वो समाचार दिया उन्होंने, तो तुरंत ही निकल पड़े। वो महापुर उनको, आपके घर वालों को आप बताना नहीं चाहते, जब गुरु बुलाए घर क्या, परिवार क्या, परिवार वाले क्या, ऐसे बोला। हमारे जीवन में पहला चीज है वो कृष्ण भक्ति या गुरु के आदेश, वो प्रामुख्यता होते है। अन्य चीज भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रामुख्य रहना चाहिए हमारा जीवन। इसका नहीं, ये नहीं कि परिवार हम लोग नहीं बसाए या ऐसा नहीं, लेकिन प्रमुख चीज क्या है, कृष्ण भक्ति। ऐसे सब भक्ति को कैसे हम लोग आधुनिक समाज में ये सब पालन कर सकते हैं बताइए। ऐसे भक्ति के बारे में किसी को कल्पना भी नहीं है आजकल के भक्तों को, है ना।
बिल्कुल कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण ब्राह्मणों की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण ब्राह्मण
तो ये सब आश्रम में होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में, गुरुकुल में होता है सब चीज।
अतः कृष्ण ब्राह्मणों के दर्श होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। विष्णुनाथ जगत ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में निर्देश दिया है, जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद हो जैसे प्रसाद के संगम बंदे करो श्री चरणा रविंद्रम। गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण ब्राह्मण के स्तर तक पहुँच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु ये संपूर्ण पद्धति ध्यान मुक्ति से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं पर व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्म से की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है।
ठीक है, प्रश्न लेंगे या आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो बाद में आगे बढ़ेंगे। एक और पॉइंट है इस विभाग में, हमको देखना चाहिए कि ये सब वर्णन हुए हैं क्या, क्योंकि बुद्धि योग मतलब ये पूरा है, ये सभी वर्णन होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के जो भक्ति है, है ना। ठीक है, तो कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?
बारे में है ना उदाहरण हिमालय 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 ये सब उदाहरण है ना बैठे है सब सब है उसके उनके अंदर सभी कर रहे हैं ना वो अभी ज्ञान अनुशीलन कर रहे हैं सेवा करते हैं वैराग्य है सब है ना उनके अंदर तो भक्ति योग में सब रहता है ठीक है तुरंत ही ये सब प्रकट हो जाता है भक्ति योग में लगने के कारण तुरंत ही ये सब प्रकट हो जाते हैं क्या अच्छा है वो तो हम लोग शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन में समझ सकते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानाम विदुरासुर न शौचम ना पिचावचारो न सत्यम चे 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए उसका मार्गदर्शन शास्त्र के आधार पर होता है असुरों को यह पता नहीं रहता ऐसे भगवान बोलते हैं या नहीं जरूरी नहीं उनका वो भी जनरली जैसे मैं बताया ना कर्म के उनको भगवान की क्या जरूरत है बोलते हैं हम लोग कर्म करेंगे उसका फल मिल जाएगा है ना ठीक है वो लोग ज्यादा वेदों के वाक्यों से आसक्त रहते हैं अभी अगले श्लोकों में आप देखेंगे वेदों में ऐसे बताया गया उससे आकर्षित ज्यादा रहते हैं उनको भगवान भगवान की जरूरत चिंता नहीं है वो वेद में बताया गया है वो करेंगे हम लोग ऐसे रहते हैं ठीक है जरूरी नहीं वेदों में बताया गया वेदों को वो स्वीकार करते हैं भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाना चाहिए वो साधना करके उन इच्छाओं को दबाना चाहिए उनको और धीरे धीरे शुद्ध हो जाना चाहिए नहीं नहीं वो तो साधना भक्ति में साधना भक्त है वो लेकिन उनको बढ़ाना नहीं चाहिए आप उनके ऊपर कल्टीवेट करें कम से कम 4 नियमों को पालन करना चाहिए वो 4 नियम को पालन नहीं कर रहा है तो वो भक्ति के स्तर से गिर जाता है नीचे गिर जाता है तुरंत ठीक है बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो रहा है कि उसका क्या परीक्षा है टेस्ट क्या है वो बहुत सारे बताया गया ना श्लोक भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चय क्षत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यताश्नता स्युः तुष्टि पुष्टि या क्षुद अपायोनुगासम ऐसे 3 उसका लक्षण बताया गया है जैसे हम लोग अन्न खाते हैं वो तुलना किससे किया गया है अन्न खाते हैं जैसे हर एक अन्न का दाना खाते हैं तो हमारा क्षुद्ध अपाय हमारा जो है भूख है मिट जाता है और दूसरा है हमें शक्ति प्राप्त होता है अन्न खाने से शक्ति प्राप्त दुर्बलता आ जाती है ना अन्न नहीं खाने से शक्ति प्राप्त हो जाता है और आनंद भी होता है वो अलग अलग व्यंजन का आस्वादन करते हैं हम लोग आनंद भी होता है उसके कारण ऐसे भक्ति में भी ये 3 चीज होना चाहिए भक्ति में आनंद आना चाहिए और क्षुद्ध अपाय मीन्स भूख मिटना मतलब भौतिक चीजों के प्रति जो भूख है हमारा हम पैसे है भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए उससे विरक्ति आना चाहिए विरक्ति दूसरा चीज सो जैसे कहते हैं हम लोग हमारा विरक्ति आना चाहिए जैसे भक्ति करते हैं हमें विरक्ति आना चाहिए और भक्ति में आनंद आना चाहिए। और तीसरा चीज है शक्ति, मतलब शक्ति कैसे आता है भक्ति में, साक्षात्कार होना चाहिए भगवान ईशानु, भक्ति पर ईशानु भव, भगवान के साक्षात्कार होना चाहिए। या शास्त्रों में दिए गए जो विचार है या उपदेश है उसका साक्षात्कार होना चाहिए। जैसे भगवान बताते हैं भौतिक जगत क्या है, दुख का स्थान है। अब ये बैक एक होके उसका अनुभव होना चाहिए, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है, यहाँ से हमें निकलना चाहिए करके। तो ये साक्षात्कार है। जब आपको मन में आ जाता है भगवान मुझे ये साक्षात्कार करा रहे हैं, तो ये देखकर मुझे, ये दुख को देखकर, तो वो हमें भक्ति में सुदृढ़ बनाता है। वो साक्षात्कार, वो शक्ति से तुलना किया गया उसे। साक्षात्कार नहीं है तो हम भक्ति में सुदृढ़ नहीं रहेंगे। तो इसलिए भक्त लोग क्या सोचते हैं, भगवान मुझे साक्षात सुदृढ़ बनाने के लिए ये अलग अलग जो कष्ट मुझे भेज रहे, ऐसे सोचते हैं भक्त लोग। ठीक है, ये जीवन मेरा अंतिम जीवन होना चाहिए और मैं ये भौतिक शरीर व्याधि मंदिर जो है उसको स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। तो वो हमें ये भक्ति के प्रगति का थीम। और वो भी है ना श्लोक, यदवधि मम चेत कृष्ण, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रसधामणि रद्दतम रंतुमास तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठि। यमुनाचार्य का श्लोक अभी आगे आएगा, वो भी भक्ति में लक्षण है। जब भी मन में इंद्र तृप्ति का विचार आता है उसके ऊपर थूकता हूँ बोलते हैं, तो ये प्रगति का लक्षण है। ठीक है, और नवरव रस धामणि, नया नया रस मिल रहा है भक्ति में। ठीक है, भागवतम की 11 स्कंद में, तो श्लोक बुक में देखिए एग्जैक्ट 11 स्कंद में है। वो 11 स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वां श्लोक शायद, 40वां श्लोक 48 40 ऐसे। विरक्ति विरक्ति पुष्टि का आनंद, भक्ति, भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है आनंद। वो श्लोक भक्ति से शुरू होता है ना, भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति तुष्टि पुष्टि क्षुधपायवानुगासन। तुष्टि तुष्टि इज कंपेयर्ड विथ भक्ति आनंद। यस, ही विल बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन डिवोशनल सर्विस, ही इज नॉट ग्रम्बलिंग, ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट ऑफ आश्रम एंड ऑल, ही इज हैप्पी सेटिस्फाइड हियर गोइंग ऑन लाइक दैट। ठीक है, यस 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 यस, वही प्रगति का बैरोमीटर है। और कुछ
यही जीवन हमारा अंतिम जीवन जीवन आखिरी जीवन
किस दृष्टि में बोल रहे हैं आप?
हाँ
अच्छा अच्छा अच्छा, वो हो सकता है। पापा जी तो बोलते हैं एक क्षण में भी आप परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कटवांग महाराज ने उनको पूछा, उन्होंने पूछा कितना समय है मेरा जीवन में, उन्होंने बोला एक क्षण है आपके लिए, तो तुरंत ही वो भगवान को स्मरण कर लिया, है ना। या लेकिन उसको अभ्यास करना चाहिए जीवन भर हमें भक्ति का, है ना, और भगवान को स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, या जब जीवन आजीवन आप भक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे भगवान के लिए, तो भगवान आप स्मरण नहीं करेंगे तो भी वो भगवान आपके मन में आ जाएंगे और आपको उनके साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? कौन सा ये कर्मयोग, मतलब कार्य करना होता है वहाँ पर, कर्म करना होता है, और ज्ञान योग मतलब ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन वो ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर। तो मतलब इसका अर्थ होता है वैराग्य मतलब भौतिक इंद्र तृप्ति से मुक्त होते हैं, वो भौतिक इंद्र तृप्ति में नहीं लगते हैं और भगवान के बारे में ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा या ज्ञान अनुशीलन करते हैं। और उसके बाद में वो अष्टांग योग में ध्यान करना होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान ध्यान मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोलिए, तो ध्यान करना होता है, तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट कंपोनेंट है उसमें। और उसके बाद में भक्ति योग में ज़्यादा क्या होता है बढ़ता है, तो हम लोग ध्यान भी करते हैं वो मंत्र के जो शब्द है ध्वनि है उसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं कि नहीं, हमें बताया जाता है ना ध्वनि को हरे कृष्ण महामंत्र के ध्वनि को सुनना चाहिए करके, उसी को ध्यान कहते हैं। या भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करते हैं हम लोग, हम लोग कार्य भी करते हैं अलग अलग सेवा के कार्य करते हैं हम लोग, और यहाँ पर बैठ के गीता भागवत को पढ़ रहे हैं उसको भी, और हम लोग भी चार नियम करते हैं वो वैराग्य है ना। तो ये सभी अंग वो दूसरे भक्ति दूसरे योग पद्धति का जो अंग है वो सब इसमें आ जाते हैं, तो इस भक्ति योग में आ जाते हैं। इसलिए भक्ति योग क्या है, परिपूर्ण है वो, उसमें सभी योग पद्धति है। ठीक है, सेवा सेवा में हम लोग सेवा करते हैं ना, बहुत सारा सेवा करते हैं, कोई विग्रह का सेवा करते हैं, कोई पकाते हैं व्यंजन भगवान को व्यंजन रखाते हैं, कोई भगवान को माला बनाते हैं, हाँ तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सेवाएं होते हैं। वही कार्य हुए हैं तो, और वो भी हम लोग समझ सकते हैं क्रिया या कर्म, मतलब भक्त लोग जो वर्णाश्रम जो प्रोफेशन स्वीकार करते हैं वो कर्म हो जाता है भक्ति में, है कि नहीं। पहला चीज अपने गुण के अनुसार हम लोग वो जो स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो मेन मैं क्या बताया, सेवा भावना होना चाहिए वहां पर। अजय हम अपना उदाहरण दे रहे थे है ना, तो इसके द्वारा मैं कैसे भगवान को सेवा कर रहा हूँ वो ज्ञान मिश्र नहीं है, ठीक है ना, वो सेवा है भगवान का, तो सेवा भावना होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारा कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ अन्य इच्छा है, उसका फल मुझे मुझे बहुत सारा सम्मान मिलेगा, मान सम्मान बहुत सारा सेवा किया हूँ ऐसे मान सम्मान का मिलेगा, या अन्य कोई चीज़ का इच्छा है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा सेवा करना गलती नहीं है, ज्यादा पढ़ाई करना गलती नहीं है, लेकिन सेवा भावना होना चाहिए वो भक्ति है। तो इसमें क्या है, प्रमुख चीज सेवा भावना को ज्यादा प्रमुखता दिया जाता है, वो सर्वोच्च स्तर है, शुद्ध भक्ति है। तो डोमिनेंस क्या होना चाहिए, सेवा होना, सेवा भावना होना चाहिए। ठीक है, नहीं वो हो सकते हैं लेकिन प्रमुख चीज क्या है, सेवा है। ये है या नहीं है चलेगा, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, ये सब है तो अच्छा है लेकिन ये तो बहुत प्रमुख चीज है, उसको हम ज्यादा प्रमुखता देते हैं भक्ति में। सेवा जो भावना है, प्रेम भगवान से जो प्रेम या सेवा भावना जो हो, प्रेम क्या, प्रेम का क्या अर्थ है, वो करने का आसक्ति, उसके लिए आकर्षण जो है उसको प्रेम कहते हैं। ठीक है, आइडियल चैंटिंग आप सीधा बैठ के जब करेंगे प्रभुपाद जी उसके बारे में भी वर्णन किए, आपको उस दिन ऐसा लगेगा कि सिर्फ 16 माला क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं, ऐसे तो वो आइडियल चैंटिंग बस बस नहीं बोलेंगे आप तो वो क्वालिटी क्वालिटी बोलते हैं, दिस इज क्वालिटी प्रभुपाद बोलते हैं, ये क्वालिटी है प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुझे कोई बाध्य नहीं कर रहे सुबह उठ के, मेरे गुरु महाराज तो मुझे देख नहीं रहे कि सुबह उठ के क्यों आप लिखा ही नहीं किया, फिर भी मैं लिखता हूँ, लोग मेरा जो मैंने जो लिखा है उसको मतलब उसको उनको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, क्यों ये, क्योंकि मुझे लिखने के लिए रुचि है, ये टेस्ट है चैंटिंग के लिए। हरिदास ठाकुर को बताया गया, हरिदास अभी बूढ़े हो गए, अभी कम कर दो ये सब, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कम कर दो, भगवान उनको बताया उन्होंने नहीं, मुझे और शुद्ध होना है और मुझे हरिनाम करना है, वो क्वालिटी है, वो टेस्ट है बोलते प्रभुपाद, ठीक है वही आइडियल चैंटिंग है बोलते। सब कुछ ठीक है ऐसे पूछा हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने, मेरा शरीर तो ठीक है, वो शरीर वो ठीक नहीं था एक्चुअली, वो उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे, ऐसा स्थिति था, वो लेटे हुए भी वो हरिनाम जप कर रहे, उनका माला में हाथ है, तो वो बोलते हैं मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं, इसलिए मुझे और भी माला करना है। हरिदास ठाकुर ऐसे बोलते, ये टेस्ट और ये क्वालिटी बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये अभी नहीं आएगा, वो बहुत देर होगा उसके लिए, पहले गुरु के आदेश तो पालन करो 16 माला करने के लिए, ऐसे बोलते हैं कम से कम 16 माला करने के लिए वो करना चाहिए, हर रोज करने के लिए 16 माला करने के लिए तो प्रयास करो बोलते, वो करना चाहिए, जब गुरु का आदेश पालन करेंगे बाद में ये टेस्ट भी आएगा क्वालिटी भी आएगा। वो 16 माला ही नहीं किया मैं क्वालिटी, कभी कभी लोग बोलते हैं ना प्रभु जी मैं एक ही माला कर रहा हूँ अच्छी तरह से कर रहा हूँ बोलते हैं वो लोग, ज्यादा करके क्या फायदा, अच्छी तरह से एक माला करना अच्छा है, नहीं पहले वो 16 माला करो जो गुरु ने आदेश दिया वो पालन करो, बाद में टेस्ट क्वालिटी सब आएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है
हमारे बहुत सारे जिम्मेदारियां भी है, तो यहाँ पे 5 दिनों के बारे में बताया गया, यहाँ पे जो माता पिता है उनका देखभाल के बहुत सारे जिम्मेदारी भी है, तो हम सारे जीवन में रहेंगे तो उनका देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो इसको समझने की सभी कृष्ण भक्ति करने से पूर्ण होंगे,
कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा उनके लिए भी ऐसा कुछ वो भी मंदिर के नज़दीक में रहे और वो भी भगवान का सेवा करे, ऐसे कुछ कुछ व्यवस्था हो सकता है कि नहीं, ठीक है उसको बता दिया ना कल आपको, फिर से क्यों पूछ रहे हो। ठीक है और ललित कृष्ण को कुछ पूछना चाहते हैं, वो प्रश्नों से मुक्त है संशयों से मुक्त है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे राम पर रख दीजिए इसको, बिगाड़